शिक्षार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा पर चर्चा करने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में जानी जाती हैं। शिक्षार्थियों, छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इन चार रचनाकारों ने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई दी, भाषा के स्तर पर और भाव व्यंजना के स्तर पर। जब आप पूरे इतिहास को देखेंगे तो यह जो कालखंड था 1918 से 38 तक का, इसमें रचनाकारों ने साहित्य में कल्पनाशीलता को, भाव प्रवणता को और हम कहें कि आत्मानुभूति को बहुत ही व्यापक रूप में प्रस्तुत किया। आज जो कविता हम पढ़ रहे हैं, मैं नील भरी दुखी बदली, यह आत्माभिव्यंजना की कविता है। महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रतिष्ठित रचनाकारों में इनकी गिनती की जाती है और इन्होंने कविता और गद्य दोनों पर समान अधिकार से लिखा। 1907 में इनका जन्म हुआ था और 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया था। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की थी और इलाहाबाद ही उनकी कर्मभूमि रही। वे महिला विद्यापीठ की कुलपति रहीं और उन्होंने उस संस्था को शिखर तक पहुंचाया। काव्य सृजन की जहां तक बात है, उसमें वे बचपन से ही संलग्न थीं और अनेक प्रसिद्ध काव्य कृतियां उनकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं निहार, नीरजा, यामा, रश्मि, सांध्य गीत और दीप शिखा। और जहां तक मैंने बताया कि गद्य पर भी समान अधिकार है उनका, तो उनके प्रसिद्ध संस्मरण हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी और भारतीय ज्ञानपीठ से भारत भारती पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आप उनकी कविता को देखें तो उसकी गहराई आपको पता लगेगी, उसमें किस तरह का भाषा का सौंदर्य है। ये जो कविता है वैसे तो खड़ी बोली में है, लेकिन इसकी भाषा बड़ी ही प्रांजल है और कहीं कहीं आपको जटिल भी लगेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह कविता दो समानांतर अर्थ को लेकर चलती है, इसलिए आप शुरू से ही इस कविता को समझने की कोशिश करें। आप जैसा शीर्षक से देख रहे हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये मैं कौन है? यहां पहले तो बदली अपना परिचय दे रही है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। वह नीर भरी है क्योंकि वह जल बरसाती है। तो यहाँ एक अर्थ तो ठीक है बदली के अर्थ में, लेकिन दूसरा अर्थ भी कवित्री के संदर्भ में यह कविता देखी जाती है और उसको हम विस्तार से देखेंगे, अर्थ जब हम देखेंगे कि कैसे दोनों अर्थ समानांतर चल रहे हैं। तो सबसे पहले 5 पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके अर्थ को समझते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। अब यहां देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक और यहाँ वर्षा जल से जो भरी हुई बदली है उसका परिचय मिल रहा है और दूसरी ओर कवित्री अपने वेदनापूर्ण जीवन की ओर संकेत कर रही है। तो बदली के पक्ष में पहले अर्थ को देख लेते हैं और फिर कवित्री के अर्थ में। बदली के पक्ष में इसका अर्थ यह है कि उसकी हर गर्जना के पीछे, हलचल के पीछे भी स्थिरता है। अर्थात ऊपर से तो दिखाई देता है कि गर्जना है, लेकिन अंदर स्थिरता है। मानो कोई है जिस पर इस क्रंदन का कोई प्रभाव नहीं होता, वह निष्पंद रहता है, अर्थात उसमें कोई हलचल नहीं होती है। जबकि उस गर्जना पर विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि वह भीषण गर्मी से आहत है, दुखी है, इसलिए बादलों की हलचल और गर्जन उसे प्रसन्न कर जाती है। बादलों में जो बसी हुई विद्युत की कौंध है, उसको यहाँ रचनाकार ने दीपक सा बताया है, और उनमें स्थित जल नदी की भांति प्रवाहित होने को आतुर है। अब आपने एक पूरा चित्र देखा कि जब बिजली कड़कती है तो किस तरह से उजाला हो जाता है, किस तरह से बारिश शुरू होती है, उसका एक पूरा बिंब यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन अगर नायिक विरहिणी के रूप में देखें कवित्री के संदर्भ में, तो उसका अर्थ यह होगा कि उसके स्पंदन में वह चिर निस्पंदन बसा है, जो सदा से स्पंदन रहित है, स्थिर है। बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा ही अभिव्यक्त हो रही है यहाँ पे। यहाँ ऐसा लगता है कि यह गर्जन किसी की पीड़ा के स्वर नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, परंतु यह किसी एक प्रेमी का क्रंदन नहीं है। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि जो भी विरह से पीड़ित स्त्री है, उसका क्रंदन है ये। उसके बाद आगे हम देख सकते हैं कि विरहिणी के आंखों में दीपक से जलते रहते हैं। ये जो दीपक है विरहाग्नि के भी हो सकते हैं और आशा के भी। आंसू उसकी पलकों से नदी के समान बहने को आतुर रहते हैं। वह अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है। किस प्रकार? जैसे बदली जलबूंदों को। तो यहाँ आप देखें कि कवित्री स्पष्ट करना चाहती हैं कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखों में भी आंसू रहते हैं। अब दूसरा अंश देख लेते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नवके नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बहार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। अब जो जल से भरी हुई बदली है, वह अपनी स्थिति का वर्णन यहाँ करती है। वह कहती है कि मेरे तो कदम कदम पर संगीत है, अर्थात बादलों का गर्जन, उसके आने की प्रसन्नता का, या जो मानव जगत है और पशु जगत है, उसकी हलचल से यह पता लगता है कि उसके हर पग में संगीत है। बादलों के उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी सांसें हैं, जिनसे पराग झरता है। उसे कवित्री यहाँ पे स्वप्न पराग कहती हैं, क्योंकि बादलों के साथ लोगों के स्वप्न भी जुड़े होते हैं। उनके घुमड़ने पर मानो वही स्वप्नों से पराग झरता है। और फिर आगे कहती हैं कि नवरंगों से युक्त इंद्रधनुषी आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र हैं। यहाँ एक देखिए चित्र खड़ा किया जा रहा है। बादलों की छाया में मलय बहार, शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। वे बताती हैं कि जब बादल घुमड़ते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है, और उसी को मलय बयार कहती हैं। उनका कहना है कि प्रीतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंध हवा के समान प्रतीत होती है। तो देखिए कि प्रकृति के साथ किस तरह से मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया गया है यहाँ पे, और मूर्त की तुलना अमूर्त से की है। जैसे तो कहती हैं कि धुएं जैसे बादल जब क्षितिज पर छाते हैं, तो मानो क्षितिज की भौहों पर चिंता का भार बढ़ गया हो। यहाँ देखिए मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता के भार से की गई है। इस तरह की अभिव्यक्तियां आपको शायद अन्य जगहों पर नहीं मिलेंगी। फिर आगे इसको देखते हैं कि ऐसी बदली जब रजकण अर्थात मिट्टी पर बरसती है तो परिणाम क्या होता है। चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूट आते हैं, जो बीज मिट्टी के नीचे दबे पड़े हुए हैं वह अंकुरित होने लगते हैं। उस अंकुरण को नवजीवन के रूप में यहाँ पे माना गया है और इसीलिए बदली कहती है कि वही रजकण से नवजीवन अंकुर बनकर निकल पड़ती है। तो यहाँ आप देखें कि बादलों के घुमड़ने, बरसने और अंकुरण का कारण बनने की प्रक्रिया और जो प्राकृतिक क्रियाकलाप होते हैं उसका सौंदर्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। और यह तो बादलों के संदर्भ में अर्थ हो गया। दूसरा विरहिणी के संदर्भ में अगर अर्थ देखें तो उसका अर्थ होगा कि विरहिणी के पदचापों में संगीत है और उसकी सुगंधित सांसें उसकी कामनाओं की सूचक हैं, इच्छाओं की सूचक हैं, और उसके रंगीन वस्त्रों में इंद्रधनुषी आभा है और वह जहां निकल जाती है वहां सुगंध बिखेरती है। उसकी भावों पर चिंता का भार है क्योंकि प्रिय से मिलन होगा या नहीं या दुविधा उसके मन में है। और जब वह पीड़ा को सह नहीं पाती तो उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं और वह उसे लगता है कि मानो यह संसार अपनी संसार को अपनी वेदना वितरण कर रही है और उसे नया जीवन दे रही है। अर्थात यहाँ कवित्री की जो वेदना है शिक्षार्थियों वह लाक्षणिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, सीधे सीधे नहीं। आप देखिए कि प्रकृति के उदाहरण के माध्यम से कवित्री यहाँ अपनी वेदना को प्रस्तुत करती हैं। तीसरा जो अंश है वह देख लेते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पदचिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटाज चली। अब यहाँ पे आप देखिए कि बादलों के घुमड़ने के बाद बारिश होने पे क्या प्रभाव पड़ता है उसकी कल्पना की गई है। बदली कहती है कि न तो मेरे आगमन से मार्ग गंदा होता है, न चले जाने से कोई पद चिन्ह शेष रह जाते हैं, उस पर न तो बादलों के बरसने से जो पृथ्वी हमारी है वह और साफ सुथरी हो जाती है और आकाश भी साफ हो जाता है। तो यहाँ वो कहना चाहती है कि उसके जीवन का अर्थ क्या है, उसकी छाप क्या है, क्योंकि वह तो अपने सुख को विस्तारित कर देती है, प्रस्फुटित कर देती है नव जीवन के रूप में। खेतों और खलिहानों में जो हरियाली हम देखते हैं वही वास्तव में उसका स्वरूप है, क्योंकि बादल तो रह नहीं जाते, बादल चले जाते हैं। इसीलिए बादल का कहना है कि विशाल आकाश में उसका कोई घर नहीं है और उसका कोई कोना अपना नहीं है। यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि मेरे भाग्य में कोई सुख नहीं है और मेरा कोई अपना नहीं है, यह जानते हुए भी जो बदली है वह घिरती रहती है, घुमरती रहती है, बरसती रहती है और नया जीवन देती रहती है। यही उसका इतिहास है कि वह कल उमड़ी थी और आज अपना जल बरसाकर चली गई, उसकी स्मृतियां शेष रह जाती हैं और उन्हीं स्मृतियों के सहारे संसार में उल्लास की सिहरन का अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए कि प्रकृति का जो बादलों का परोपकारी रूप है उसका चित्रण है, लेकिन दूसरे अर्थ में विरहिणी के रूप में इसका अगर अर्थ हम समझें तो यहाँ पे कवित्री मानो कह रही है कि संसार में उसके आने या चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, उसका कोई पद चिन्ह तक शेष नहीं रहता, हाँ केवल स्मृतियां रह जाती हैं, और लोग उसकी वेदना को याद करते हैं और पुलकित होते हैं, अर्थात खुश होते हैं। तो इतने विस्तृत संसार में किसी कोने को अपना न होना कितना कष्ट का विषय है, लेकिन वो कहती हैं कि यही हमारी नियति है। और उमड़ना और मिट जाना जैसे यही उनके भाग्य का खेल है। अब यहाँ देखिए आपकी कितने बेहतर तरीके से मानव जीवन का बदली के साथ एक तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। और महादेवी ने अपनी विरह वेदना को सीधे सीधे नहीं कहा है, बल्कि प्रकृति के माध्यम से प्रकृति का आलंबन लेकर अपनी वेदना को प्रस्तुत किया है। यहाँ माँ देवी की करुणा भी नजर आती है और उनकी जो एक समाज को देने की प्रवृत्ति है, समाज को सब कुछ समर्पित करने की प्रवृत्ति है, वह भी यहाँ पे दिखाई देती है। कहीं कहीं पे आपको निराशावादी दृष्टिकोण दिखाई देगा और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर भी दिखाई देगा। और इन पंक्तियों में महादेवी जी ने मानव जीवन की जो असली स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उसका चित्रण किया है। देखिए हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, वह क्षणिक है, चिरस्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा और यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसीलिए वे कहती हैं कि मानव जीवन का यही परिचय और इतिहास है कि वह आज है लेकिन कल नहीं होगा। और बड़े सलीके से शुद्ध खड़ी बोली में और गीतात्मक शैली में उन्होंने जीवन के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर अलंकारों की दृष्टि से देखें शिक्षार्थियों, तो यहाँ पे उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास आदि अनेक अलंकारों की सृष्टि दिखाई देगी और संपूर्ण गीत में आपको मानवीकरण दिखाई देगा। बादल के जो जितने भी क्रियाकलाप हैं वह मनुष्य के क्रियाकलाप हैं। इसीलिए इस कवि को, कवित्री महादेवी को सौंदर्य का कवि भी माना जा सकता है, विरह वेदना का भी कवि है और भावों की उदात्तता इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। वियोग श्रृंगार का सुंदरतम चित्र इनकी रचनाओं में है और लक्षणा शब्द शक्ति आप देख सकते हैं। सीधे सीधे बात नहीं कहते, वे उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को रखती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें शिल्पगत बहुत सौंदर्य है। मूर्त से अमूर्त की तुलना आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया था, चिंता का भार बनी अविरल। और मानवीकरण अगर आप देखना चाहते हैं तो श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकून, इस तरह से आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा और भी अलंकार आपको यहाँ दिखाई देंगे, विशेषण, विपर्यय वगैरह। तो मैं शिक्षार्थियों से यही कहूंगा कि आप इस कविता को बार बार पढ़ें और अर्थ को समझने की कोशिश करें। मैंने संक्षेप में इसकी विशेषताओं को आपके सामने रखा है। धन्यवाद।